दिल्ली में सल्तनत और मुगल काल के कई नायाब भवन और किले मिलेंगे, सूफी संतों, बादशाहों और उनके कई कई दरबारियों की मज़ारें भी, भूतिया कही जाने वाली कुछ मध्यकालीन इमारतें भी। दिल्ली ऐसे भव्य शानदार इमारतों से भरी पड़ी है जिनके सामने खड़े होकर के अपने अतीत को आप एक बार एहसास कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की भीड़ में आपको ज़रा देर के सुकून के बहुत सारे अनुभव चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी दिल्ली में बेशुमार भीड़ अपनी तमाम मन्नतों के लिए सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो की दरगाह की ओर जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुकें वहाँ पर तो निज़ामुद्दीन के 64 खंभे के उत्तरी हिस्से में लगभग 3,500 वर्ग फीट का एक परिसर लाल पत्थरों की दीवारों से घिरा है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर से मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की मज़ार है। पहले यहाँ सिर्फ उनकी ही कब्र हुआ करती थी। बाज़ार और उसके आसपास की संरचना सबसे पहले 1955 में और उसके बाद कई और किश्तों में बनाई गई। उनकी मज़ार के पीछे उनकी बेगम उमराव बेगम की कब्र है, जिनकी मृत्यु गालिब की मृत्यु के एक साल बाद हुई थी। गालिब की मज़ार में संगमरमर के पत्थर पर गालिब का यह शेर दर्ज है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब अपने मज़ार में बिल्कुल अकेले नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी में भी गालिब को शायद अकेलापन ही पसंद रहा था। जीते जी उनकी ख्वाहिश यही तो थी, पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा ख्वान कोई न हो। उर्दू के इस महान शायर का कल 27 दिसंबर को जन्मदिन था। लगभग 224 साल पहले 27 दिसंबर 1797 में उनका जन्म हुआ था। साहित्य में अनेक विभूतियां जन्मती हैं और अपनी प्रतिभा से लोगों को चमत्कृत करती हैं, पर आकाश गंगा में कहीं खो जाती हैं। कुछ तो गुमनामी के अंधेरे में ब्लैक होल की तरह विलीन हो जाती हैं, पर कुछ प्रतिभाएं समय के अनेक प्रभाव को झेलते हुए, मौजे वक्त को पार करते हुए कालजायी होकर अनवरत रूप से बनी रहती हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं लगभग विश्व के हर साहित्य में मिलेंगी और उनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहती है। गालिब उन्हीं कालजयी शख्सियतों में से एक हैं। आज भी हर अवसर पर उनके शेर को माहौल को वजनदार और मौजू बनाया जाता है। गालिब एक सामंत थे, सूफी थे, कला के पारखी थे, फक्कड़ थे और हाँ, शराब भी पीते थे। यूँ तो उनके बहुत से शेर मशहूर हैं, जैसे इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। गालिब बहुत ही ज़्यादा व्यंगकार थे और वो ऐसे ऐसे चुटकुले अपनी ज़िंदगी में ही करते कहते रहते थे जिससे लोगों को बरबस हंसी आ जाती थी। जैसे एक बार अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू की और उनसे एक सवाल किया, तुम्हारा मज़हब क्या है? उन्होंने कहा, मैं आधा मुसलमान हूँ और आधा काफिर, शराब पीता हूँ पर सुअर नहीं खाता हूँ। ये गालिब का भले ही एक व्यंग था या साफ बयानी, पर इस जवाब ने माहौल को हल्का कर दिया। गालिब की 224वीं जयंती पर हमने कुछ उनके चाहने वालों से बात करने की कोशिश की है। जावेद अशरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में PhD कर रहे हैं और गालिब के ऊपर उनका काफ़ी काम है। वो गालिब को याद करते हुए SBS को बताते हैं।
देखिए सर, गालिब सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि उर्दू के अलावा कई ज़बानों में गालिब का एतराफ़ किया गया है। और गालिब एक ऐसा शायर है जिसने रिवायत से हट के अपना एक अलग रास्ता तैयार किया है, जो आने वाले दौर के शायरों के रास्ते को हमवार करती हैं और उनकी निशानदेही करती हैं। दूसरी बात यह है, पहले जो शोरा रिवायत से या जो रिवायत के रिवायती उनके मज़मून हुआ करते थे, जो भी बातें कहते थे वो पुरानी घिसी पिटी रिवायतों पे करते थे, गालिब ने उन रिवायतों से बगावत करके एक नया रास्ता निकाला। जैसा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा भी है कि मुग़ल ने हिंदुस्तान को तीन चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। मालूम ये पड़ता है, हम किसी भी महफिल में पहुँचें, कहीं भी बात करें, तो हमें यह एहसास होता है कि गालिब और उर्दू दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। किसी भी बज्म में या किसी भी महफिल में अगर उर्दू की बात हो रही है और वहाँ पे गालिब का जिक्र ना आए तो यूँ समझा जाएगा वो महफिल अधूरी है। जैसे पहले के शोरा कहा करते थे या पहले के शायर, मोमिन खा मोमिन का एक शेर है, उस नक्श पाके सजदे ने किया क्या किया जलील, मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गया। यहाँ अपने महबूब के कूचे में सर के बल जाने की बात मोमिन खा मोमिन करता है, लेकिन जब गालिब ये बात करता है तो कहता है कि वफा कैसी कहाँ का इश्क, सर जब फोड़ना ठहरा तो फिर आए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। जब हमें अपने आप को मिटाना ही है तो हम क्यों आपके ही आस्था पे अपने सर को पटकेंगे। एक तीसरी बात जो आपके सामने है कि निज़ाम कुदरत पे बहस करते हुए गालिब से पहले किसी शायर में तो हिम्मत नहीं आई थी कि वो खुदा के कुदरत पे या निज़ाम कुदरत पे सवाल खड़ा कर सके, लेकिन गालिब जब ये इस मौजू पे बहस करता है या इस मौजू पे शेर लिखता है तो कहता है कि सब्ज़ व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। चौथी बात, हम जब गालिब का बगौर मुताला करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि गालिब एक ऐसे दौर की पैदावार है जिसने रंज अलम और मुसीबतों के दौर में समझ लीजिए एक जहाद इज्तिहाद की ज़िंदगी गालिब ने गुजारी है, और इज्तिहाद की ज़िंदगी उनके इज्तिहाद की जो नमूने हैं हमें उनके शायरी में देखने को मिलते हैं। गालिब कहते हैं वो गम और अलम की हालत में खुशी का माहौल बना देते थे। एक दो मिसालें आपके सामने मैं रखूंगा। एक बार वो मौलाना फैजुल हसन के साथ दिल्ली के किसी मुशायरे से वापस आ रहे थे और उस मुशायरे से वापस आते हुए दिल्ली के एक तंग गली से गुजर रहे थे जहां कुछ गधे थे, गधे वहां पे खड़े थे। तो गालिब से मौलाना ने कहा कि जनाब यहाँ तो दिल्ली में गधे बहुत आ गए हैं। तो गालिब ने तुरंत हाजिर जवाबी से बात जवाब भी दिया और उसमें तंज का पहलू भी निकाल लिया, जनाब ये दिल्ली के गधे नहीं हैं बल्कि ये गधे तो बाहर से आ जाते हैं। तो इस पे ये अपने आप को खींचते हुए रह गए मौलाना। एक दफ़ा किसी साहब के मैयत में उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, यानी तीन तीन बीवियों का इंतकाल हो चुका था, उसकी ताज़ियत में गालिब साहब पहुँचते हैं। गालिब वहाँ पहुँचते हैं, कहें कमाल है साहब, यहाँ कोई तीन तीन से निपट चुका और किसी का एक ही से पाला नहीं छूट रहा है। तो इस तरह की बातों से वो मतलब गालिब अपनी बातों से तंज और मजाक का पहलू पैदा कर देते थे।
अहमद नदीम एक उभरते हुए शायर हैं, अक्सर उन्हें जश्न रेख्ता में देखा और सुना जा सकता है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया है और इस वक्त वो गालिब को पढ़ने में तल्लीन रहते हैं। अहमद गालिब के कुछ व्यंग्यात्मक तथ्यों को सामने लाते हुए बताते हैं।
तो गालिब के मजाहिया लतीफ़े में एक लतीफ़ा ये है कि एक बार मिर्ज़ा गालिब अपने मकान पर बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, और उनसे उनके एक रफ़ीक सरदार मिर्ज़ा मिलने को आए। इतने में जब काफ़ी देर गुफ्तगू हुई, जब सरदार मिर्ज़ा साहब उनके रफ़ीक जाने लगे तो गालिब उनके साथ साथ ही फ़र्श के किनारे तक शम्मा लेकर चले आए। इतने में सरदार मिर्ज़ा ने कहा कि क़िबला आपने क्यों ज़हमत की, मैं तो खुद ही जूते पहन लेता। तो कहा मैं शम्मा, तो गालिब ने कहा कि मैं शम्मा दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ कि कहीं आप मेरा जूता ना पहन लें। एक और है इनके गालिब के शागिर्दों में, एक बहुत बड़ा नाम है मीर मेहदी मजरूह का। तो एक बार गालिब मकान में बैठे हुए थे, अंदर कमरे में वो कराह रहे थे कि दर्द वर्द कहीं हो रहा होगा, तो मिर्ज़ा मीर मजरूह जो है अंदर आए, उन्होंने गालिब साहब को कराहते हुए देखा तो वो उनके पैर दाबने लगे। तो गालिब ने कहा कि अरे मियाँ तुम सैयद ज़ादे हो, मुझे क्यों गुनाहगार करते हो। तो कहा तो मीर मजरूह ने कहा कि अगर आपको ऐसा ही ख्याल है तो मुझे उजरत दे दीजिएगा। तो जब पैर दाब चुके तो इन्होंने अजराहे मजाह मजरूह साहब ने कहा कि लाइए मेरी उजरत दीजिए। तो गालिब ने कहा काहे की उजरत, तुमने मेरे पैर दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाब लिए। तो ये था आलम गालिब के मजाक का।
आज बहुत ही कम लोग गालिब की मज़ार पर जाते हैं, शायद बहुत ही कम। कभी किसी की नज़र पड़ती है तो वहाँ एक सादगी भरा सन्नाटा पसरा रहता है। साहित्यकार पत्थरों से नहीं अमर होते हैं, वे अमर रहते हैं अक्षरों में। अक्षर का अर्थ ही है जिसका क्षय न हो। मनुष्य के मन की गुत्थियों और अपने वक्त के साथ उसके अंतर संघर्ष का जैसा चित्र और स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध जैसा विद्रोह गालिब की शायरी में मिलता है, वो उर्दू ही नहीं विश्व की किसी भी भाषा के लिए गर्व का विषय हो सकता है। 200 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन गालिब आज भी प्रासंगिक हैं। भले ही उनकी बहुत सी शायरी कठिन उर्दू में हो, लेकिन आज भी कहा जाता है कि गालिब अगर समझ में आए तो मज़ा देता है और ना समझ में आए तो दुगना मज़ा देता है। उनका एक शेर हमेशा नौजवानों की पसंद का रहेगा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से न टपके तो फिर लहू क्या है। लखनऊ से फैसल फरीद।